क्रमांक 381। जीव भले ही चाहे जितने शास्त्र पढ़ ले, वाद विवाद करना जाने, प्रमाण नय निक्षेपादि से वस्तु की तर्कणा करे, धारणा रूप ज्ञान को विचारों में विशेष विशेष फेरे, किंतु यदि ज्ञान स्वरूप आत्मा के अस्तित्व को न पकड़े और तद्रूप परिणमित न हो, तो वह ज्ञेय निमग्न रहता है। जो जो बाहर का जाने उसमें तल्लीन हो जाता है, मानो ज्ञान बाहर से आता हो, ऐसा भाव वेदता रहता है। सब पढ़ गया, अनेक युक्ति न्याय जाने, अनेक विचार किए, परंतु जानने वाले को नहीं जाना। ज्ञान की असली भूमि दृष्टिगोचर नहीं हुई तो वह सब जानने का फल क्या? शास्त्राभ्यासादि का प्रयोजन तो ज्ञान स्वरूप आत्मा को जानना है। क्रमांक 382। आत्मा उत्पाद व्यय द्रव्य स्वरूप है, वह नित्य रहकर पलटता है। उसका नित्य स्थायी स्वरूप रीता नहीं, पूर्ण भरा हुआ है। उसमें अनंत गुणरत्नों के कमरे भरे हैं। उस अद्भुत रुद्धियुक्त नित्य स्वरूप पर दृष्टि दे तो तुझे संतोष होगा कि मैं तो सदा कृतकृत्य हूँ। उसमें स्थिर होने से तू पर्याय में कृतकृत्य हो जाएगा। क्रमांक 383। ज्ञायक स्वभाव आत्मा का निर्णय करके मति श्रुत ज्ञान का उपयोग जो बाह्य में जाता है उसे अंतर में समेट लेना। बाहर जाते हुए उपयोग को ज्ञायक के अवलंबन द्वारा बारंबार अंतर में स्थिर करते रहना, वही शिवपुरी पहुंचने का राजमार्ग है। ज्ञायक आत्मा की अनुभूति वही शिवपुरी की सड़क है, वही मोक्ष का मार्ग है। दूसरे सब उस मार्ग का वर्णन करने के भिन्न भिन्न प्रकार हैं। जितने वर्णन के प्रकार हैं उतने मार्ग नहीं हैं, मार्ग तो एक ही है। क्रमांक 384। तेरे आत्मा में निदान ठसाठस भरे हैं, अनंत गुण निदान को रहने के लिए अनंत क्षेत्र की आवश्यकता नहीं है। असंख्यात प्रदेशों के क्षेत्र में ही अनंत गुण ठसाठस भरे हैं। तुझ में ऐसे निदान है तो फिर तू बाहर क्यों जाता है? तुझ में है उसे देखना, तुझ में क्या कमी है? तुझ में पूर्ण सुख है, पूर्ण ज्ञान है, सब कुछ है। सुख और ज्ञान तो क्या, परंतु कोई भी वस्तु बाहर लेने जाना पड़े ऐसा नहीं है। एक बार तू अंतर में प्रवेश कर, सब अंतर में है। अंतर में गहरे उतरने पर, सम्यक दर्शन होने पर तेरे निधान तुझे दिखाई देंगे और उन सर्व निधान के प्रगटंश को वेद कर तू तृप्त हो जाएगा। पश्चात पुरुषार्थ करते ही रहना, जिससे पूर्ण निधान का भोक्ता होकर तू सदाकाल परम तृप्त तृप्त रहेगा। क्रमांक 385। जीव ने अनंत काल में अनंत बार सब कुछ किया, परंतु आत्मा को नहीं पहचाना। देव गुरु क्या कहते हैं वह बराबर जिज्ञासा से सुनकर विचार करके, यदि आत्मा की ठोस भूमि जो आत्मा अस्तित्व उसे ख्याल में लेकर निज स्वरूप में लीनता की जाए तो आत्मा पहचानने में आए, आत्मा की प्राप्ति हो। इसके सिवा बाहर से जितने मिथ्या प्रयत्न किए जाएं वे सब भूसा कूटने के बराबर हैं। क्रमांक 386। बाह्य क्रियाएं मार्ग नहीं बतलाती, ज्ञान मार्ग बतलाता है। मोक्ष के मार्ग का प्रारंभ सच्ची समझ से होता है, क्रिया से नहीं। इसलिए प्रत्यक्ष गुरु का उपदेश और परमागम का प्रयोजन भूत ज्ञान मार्ग प्राप्ति के प्रबल निमित्त है। चैतन्य का स्पर्श करके निकलती हुई वाणी मुमुक्षु को हृदय में उतर जाती है। आत्मस्पर्शी वाणी आती हो और जीव एकदम रुचिपूर्वक सुने तो सम्यक्त्व के निकट हो जाता है। क्रमांक 387। आत्मा उत्कृष्ट अजायब घर है, उसमें अनंत गुण रूप अलौकिक आश्चर्य भरे हैं। देखने जैसा सब कुछ, आश्चर्यकारी ऐसा सब कुछ तेरे अपने अजायब घर में ही है। बाह्य में कुछ नहीं है तो उसी का अवलोकन करना। उसके भीतर एक बार झांकने से भी तुझे अपूर्व आनंद होगा। वहां से बाहर निकलना तुझे सुहाएगा ही नहीं। बाहर के सर्व वस्तुओं के प्रति तेरा आश्चर्य टूट जाएगा, तू पर से विरक्त हो जाएगा। क्रमांक 388। मुनिराज को शुद्धात्म तत्व के उग्र अवलंबन द्वारा आत्मा में से संयम प्रकट हुआ है। सारा ब्रह्मांड पलट जाए तथापि मुनिराज के यह दृढ़ संयम परिणति नहीं पलट सकती। बाहर से देखने पर तो मुनिराज आत्मसाधना के हेतु वन में अकेले पसते हैं, परंतु अंतर में देखें तो अनंत गुण से भरपूर स्वरूप नगर में उनका निवास है। बाहर से देखने पर भले ही वे क्षुधावंत हो, तृषावंत हो, उपवासी हो, परंतु अंतर में देखा जाए तो वे आत्मा के मधुर रस का आस्वादन कर रहे हैं। बाहर से देखने पर भले ही उनके चारों ओर घनघोर अंधेरा व्याप्त हो, परंतु अंतर में देखो तो मुनिराज के आत्मा में आत्मज्ञान का उजाला फैल रहा है। बाहर से देखने पर भले ही मुनिराज सूर्य के प्रखर ताप में ध्यान करते हो, परंतु अंतर में वे संयम रूपी कल्प वृक्ष की शीतल छाया में विराजमान है। उपसर्ग का प्रसंग आए तब मुनिराज को ऐसा लगता है कि अपनी स्वरूप स्थिरता के प्रयोग का मुझे अवसर मिला है, इसलिए उपसर्ग मेरा मित्र है। अंतरंग मुनिदशा अद्भुत है, वहां देह में भी उपशम रस की ढाले ढल गए होते हैं। क्रमांक 399। जिसको द्रव्य दृष्टि यथार्थ प्रकट होती है, उसे दृष्टि के जोर में अकेला ज्ञायक ही चैतन्य ही भासता है, शरीर आदि कुछ भासित नहीं होता। वेद ज्ञान की परिणति ऐसी दृढ़ हो जाती है कि स्वप्न में भी आत्मा शरीर से भिन्न भासता है। दिन को जागृत दशा में तो ज्ञायक निराला रहता है, परंतु रात को नींद में भी आत्मा निराला ही रहता है। निराला तो है ही, परंतु प्रगट निराला हो जाता है। उसको भूमिका अनुसार बाह्य वर्तन होता है, परंतु चाहे जिस संयोग में उसकी ज्ञान वैराग्य शक्ति कोई और ही रहती है। मैं तो ज्ञायक सुज्ञायक ही हूँ, निःशंक ज्ञायक हूँ। विभाव और मैं कभी एक नहीं हुए, ज्ञायक पृथक ही है। सारा ब्रह्मांड पलट जाए तथापि पृथक ही है, ऐसा अचल निर्णय होता है। स्वरूप अनुभव में अत्यंत निशंकता वर्तती है। ज्ञायक ऊपर चढ़कर ऊर्ध्व रूप से विराजता है, दूसरा सब नीचे रह जाता है। क्रमांक 390। मुनिराज समाधि परिणत है, वे ज्ञायक का अवलंबन लेकर विशेष विशेष समाधि सुख प्रकट करने को उत्सुक है। मुनिवर श्री पद्म प्रभमलधारी देव कहते हैं कि मुनि सकल विमल केवल ज्ञान दर्शन के लोलुप हैं। स्वरूप में कब ऐसी स्थिरता होगी जब श्रेणी लदकर वितराग दशा प्रकट होगी? कब ऐसा अवसर आएगा जब स्वरूप में उग्र रमणता होगी और आत्मा का परिपूर्ण स्वभाव ज्ञान केवल ज्ञान प्रकट होगा? कब ऐसा परम ध्यान जमेगा कि आत्मा शाश्वत रूप से आत्म स्वभाव में ही रह जाएगा? ऐसी भावना मुनिराज को वर्तती है। आत्मा के आश्रय से एकाग्रता करते करते वे केवल ज्ञान के समीप जा रहे हैं। प्रचुर शांति का वेदन होता है। कषाय बहुत मंद हो गए हैं। कदाचित कुछ रुद्धियां चमत्कार भी प्रकट होते जाते हैं, परंतु उनका उनके प्रति दुर्लक्ष है। हमें ये चमत्कार नहीं चाहिए, हमें तो पूर्ण चैतन्य चमत्कार चाहिए। उसके साधन रूप ऐसा ध्यान, ऐसी निर्विकल्पता, ऐसी समाधि चाहिए कि जिसके परिणाम से असंख्य प्रदेशों में प्रत्येक गुण उसकी परिपूर्ण पर्याय से प्रकट हो, चैतन्य का पूर्ण विलास प्रकट हो। इस भावना को मुनिराज आत्मा में अत्यंत लीनता द्वारा सफल करते हैं। क्रमांक 391। अज्ञानी ने अनादि काल से अनंत ज्ञान आनंदादि समृद्धि से भरे हुए निज चैतन्य महल को ताले लगा दिए हैं और स्वयं बाहर भटकता रहता है। ज्ञान बाहर से ढूंढता है, आनंद बाहर से ढूंढता है, सब कुछ बाहर से ढूंढता है, स्वयं भगवान होने पर भी भीख मांगता रहता है। ज्ञानी ने चैतन्य महल के ताले खोल दिए हैं। अंतर में ज्ञान आनंद आदि की अखूट समृद्धि देखकर और थोड़ी भोग कर पहले कभी जिसका अनुभव नहीं हुआ था, ऐसी विश्रांति उसे हो गई है। क्रमांक 392। एक चैतन्य तत्व ही उत्कृष्ट आश्चर्यकारी है। विश्व में ऐसी कोई विभूति नहीं है कि जो चैतन्य तत्व से ऊंची हो। वह चैतन्य तो तेरे पास ही है, तू ही वह है। तो फिर शरीर पर उपसर्ग आने पर या शरीर छूटने के प्रसंग में तू डरता क्यों है? जो कोई बाधा पहुंचाता है वह तो पुद्गल को पहुंचाता है, जो छूट जाता है वह तो तेरा था ही नहीं। तेरा तो मंगलकारी आश्चर्यकारी तत्व है, तो फिर तुझे डर किसका? समाधि में स्थिर होकर एक आत्मा का ध्यान कर, भय छोड़ दे। क्रमांक 393। जिसे भव भ्रमण से सचमुच छूटना हो, उसे अपने को परद्रव्य से भिन्न पदार्थ निश्चित करके अपने ध्रुव ज्ञायक स्वभाव की महिमा लाकर सम्यक दर्शन प्रकट करने का प्रयास करना चाहिए। यदि ध्रुव ज्ञायक भूमि का आश्रय न हो तो जीव साधना का बल किसके आश्रय से प्रकट करेगा? ज्ञायक की ध्रुव भूमि में दृष्टि जमने पर उसमें एकाग्रता रूप प्रयत्न करते करते निर्मलता प्रकट होती जाती है। साधक जीव की दृष्टि निरंतर शुद्धात्म द्रव्य पर होती है, तथापि साधक जानता है सबको। वह शुद्ध अशुद्ध पर्यायों को जानता है और उन्हें जानते हुए उनके स्वभाव विभाव पने का, उनके सुख दुख रूप वेदन का, उनके साधक बाधक पने का इत्यादि का विवेक वर्तता है। साधक दशा में साधक के योग्य अनेक परिणाम वर्तते रहते हैं, परंतु मैं परिपूर्ण हूँ, ऐसा बल सतत साथ ही साथ रहता है। पुरुषार्थ रूप क्रिया अपनी पर्याय में होती है और साधक उसे जानता है, तथापि दृष्टि के विषयभूत ऐसा जो निष्क्रिय द्रव्य, वह अधिक का अधिक रहता है। ऐसी साधक परिणति की अटपटी रीति को ज्ञानी बराबर समझते हैं, दूसरों को समझना कठिन होता है। क्रमांक 394। मुनिराज के हृदय में एक आत्मा ही विराजता है, उनका सर्व प्रवर्तन आत्मामय ही है। आत्मा के आश्रय से बड़ी निर्भयता प्रकट हुई है। घोर जंगल हो, घनी झाड़ी हो, सिंह व्याघ्र दहाड़ते हो, मेघाच्छन डरावनी रात हो, चारों ओर अंधकार व्याप्त हो, वहां गिरी गुफा में मुनिराज बस अकेले चैतन्य में ही मस्त होकर निवास करते हैं। आत्मा में से बाहर आए तो श्रुतादि के चिंतवन में चित्त लगता है और फिर अंतर में चले जाते हैं, स्वरूप के झूले में झूलते हैं। मुनिराज को एक आत्मलीनता का ही काम है, अद्भुत दशा है। क्रमांक 395। चेतन का चैतन्य स्वरूप पहचानकर उसका अनुभव करने पर विभाव का रस टूट जाता है। इसलिए चैतन्य स्वरूप की भूमि पर खड़ा रहकर तू विभाव को तोड़ सकेगा। विभाव को तोड़ने का यही उपाय है। विभाव में खड़े खड़े विभाव नहीं टूटेगा, मंद होगा और उससे देवादि की गति मिलेगी, परंतु चार गति का अभाव नहीं होगा। क्रमांक 396। तीन लोक को जानने वाला तेरा तत्व है, उसकी महिमा तुझे क्यों नहीं आती? आत्मा स्वयं ही सर्वस्व है, अपने में ही सब भरा है। आत्मा सारे विश्व का ज्ञाता, दृष्टा एवं अनंत शक्ति का धारक है, उसमें क्या कम है? सर्वरुद्धि उसी में है, तो फिर बाह्य रुद्धि का क्या काम है? जिसे बाह्य पदार्थों में कौतूहल है, उसे अंतर की रुचि नहीं है। अंतर की रुचि के बिना अंतर में नहीं पहुंचा जाता, सुख प्रकट नहीं होता। क्रमांक 397। चैतन्य मेरा देव है, उसी को मैं देखता हूं, दूसरा कुछ मुझे दिखता ही नहीं है ना? ऐसा द्रव्य पर जोर आए, द्रव्य की ही अधिकता रही, तो सब निर्मल होता जाता है। स्वयं अपने में गया, एकत्व बुद्धि टूट गई, वहां सब रस ढीले हो गए। स्वरूप का रस प्रकट होने पर अन्य रस में अनंत फीकापन आ गया। न्यारा, सबसे न्यारा हो जाने से संसार का रस घटकर अनंतवा भाग रह गया, सारी दिशा पलट गई। क्रमांक 398। मैंने अपने परम भाव को ग्रहण किया, उस परम भाव के सामने तीन लोक का वैभव तुच्छ है। और तो क्या, परंतु मेरे स्वाभाविक पर्याय, निर्मल पर्याय प्रकट हुई, वह भी मैं द्रव्य दृष्टि के बल से कहता हूं कि मेरी नहीं है। मेरा द्रव्य स्वभाव अगाध है, अमाप है। निर्मल पर्याय का वेदन भले हो, परंतु द्रव्य स्वभाव के आगे उसके विशेषता नहीं है। ऐसी द्रव्य दृष्टि कब प्रकट होती है? कि जब चैतन्य की महिमा लाकर सबसे विमुख होकर जीव अपनी ओर झुके, तब। क्रमांक 399। सम्यक दृष्टि को भले स्वानुभूति स्वयं पूर्ण नहीं है, परंतु दृष्टि में परिपूर्ण ध्रुव आत्मा है। ज्ञान परिणति द्रव्य तथा पर्याय को जानती है, परंतु पर्याय पर जोर नहीं है। दृष्टि में अकेला स्व की ओर का, द्रव्य की ओर का बल रहता है। क्रमांक 400। मैं तो शाश्वत पूर्ण चैतन्य जो हूँ सो हूँ। मुझ में जो गुण हैं वे ज्यों के त्यों हैं, जैसे कि तैसे ही हैं। मैं एकेंद्रिय के भव में गया, वहाँ मुझ में कुछ कम नहीं हो गया है, और देव के भव में गया, वहाँ मेरा कोई गुण बढ़ नहीं गया है। ऐसी द्रव्य दृष्टि ही एक उपादेय है। जानना सब, किंतु दृष्टि रखना एक द्रव्य पर। क्रमांक 401। ज्ञानी का परिणमन विभाव से विमुख होकर स्वरूप की ओर ढल रहा है। ज्ञानी निज स्वरूप में परिपूर्ण रूप से स्थिर हो जाने को तरसता है। यह विभाव भाव हमारा देश नहीं है। इस प्रदेश में हम कहाँ आ पहुंचे? हमें यह अच्छा नहीं लगता। यहाँ हमारा कोई नहीं है। जहाँ ज्ञान, श्रद्धा, चारित्र, आनंद, वीर्यादि अनंत गुण रूप हमारा परिवार बसता है, वह हमारा स्वदेश है। अब हम उस स्वरूप स्वदेश की ओर जा रहे हैं। हमें त्वरा से अपने मूल वतन में जाकर आराम से बसना है, जहाँ सब हमारे हैं। क्रमांक 402। जो केवल ज्ञान प्राप्त कराए, ऐसा अंतिम पराकाष्ठा का ध्यान वह उत्तम प्रतिक्रमण है। इन महामुनिराज ने ऐसा प्रतिक्रमण किया कि दोष पुनः कभी उत्पन्न ही नहीं हुए। ठेठ श्रेणी लगा दी कि जिसके परिणाम से वितरागता होकर केवल ज्ञान का सारा समुद्र उछल पड़ा। अंतर्मुखता तो अनेक बार हुई थी, परंतु यह अंतर्मुखता तो अंतिम से अंतिम कोटि की। आत्मा के साथ पर्याय ऐसी जुड़ गई कि उपयोग अंदर गया सो गया, फिर कभी बाहर आया ही नहीं। चैतन्य पदार्थ को जैसा ज्ञान में जाना था, वैसा ही उसको पर्याय में प्रसिद्ध कर लिया। क्रमांक 403। जैसे पूर्णमासी के पूर्ण चंद्र के योग से समुद्र में ज्वार आता है, उसी प्रकार मुनिराज को पूर्ण चैतन्य चंद्र के एकाग्र अवलोकन से आत्म समुद्र में ज्वार आता है। वैराग्य का ज्वार आता है, आनंद का ज्वार आता है, सर्वगुण पर्याय का यथासंभव ज्वार आता है। यह ज्वार बाहर से नहीं, भीतर से आता है। पूर्ण चैतन्य चंद्र को स्थिरता पूर्वक निहारने पर अंदर से चेतना उछलती है, चारित्र उछलता है, सुख उछलता है, वीर्य उछलता है, सब कुछ उछलता है। धन्य मुनि दशा। क्रमांक 404। पर से भिन्न ज्ञायक स्वभाव का निर्णय करके बारंबार भेद ज्ञान का अभ्यास करते करते मतिश्रुत के विकल्प टूट जाते हैं। उपयोग गहराई में चला जाता है और भोंयरे में भगवान के दर्शन प्राप्त हो, तदनुसार गहराई में आत्म भगवान दर्शन देते हैं। इस प्रकार स्वानुभूति की कला हाथ में आने पर किस प्रकार पूर्णता प्राप्त हो, वह सब कला हाथ में आ जाती है। केवल ज्ञान के साथ केली प्रारंभ होती है। क्रमांक 405। अज्ञानी जीव ऐसे भाव से वैराग्य करता है कि यह सब क्षणिक है, सांसारिक उपाधि दुख रूप है, परंतु उसे मेरा आत्मा ही आनंद स्वरूप है। ऐसे अनुभव पूर्वक सहज वैराग्य नहीं होने के कारण सहज शांति परिणमित नहीं होती। वह घोर तप करता है, परंतु कषाय के साथ एकत्व बुद्धि नहीं टूटी होने से आत्म प्रतिपन्न प्रकट नहीं होता। क्रमांक 406। तू अनादि अनंत पदार्थ है, जानना तेरा स्वभाव है। शरीर आदि जड़ पदार्थ कुछ जानते नहीं है, जानने वाला कभी नहीं जानने वाला नहीं होता, नहीं जानने वाला कभी जानने वाला नहीं होता। सदा सर्वदा भिन्न रहते हैं, जड़ के साथ एकत्व मानकर तू दुखी हो रहा है। वह एकत्व के मान्यता भी तेरे मूल स्वरूप में नहीं है। शुभाशुभ भाव भी तेरा असली स्वरूप नहीं है। यह ज्ञानी अनुभवी पुरुषों का निर्णय है। तू इस निर्णय की दिशा में प्रयत्न कर। मति व्यवस्थित किए बिना चाहे जैसे तर्क ही उठाता रहेगा तो पार नहीं आएगा। क्रमांक 407। यहाँ श्री प्रवचन सार प्रारंभ करते हुए कुंद कुंदाचार्य भगवान को पंच परमेष्ठी के प्रति कैसी भक्ति उल्लसित हुई है। पांचों परमेष्ठी भगवंतों का स्मरण करके भक्तिभाव पूर्वक कैसा नमस्कार किया है। तीनों काल के तीर्थंकर भगवंतों को साथ ही साथ मनुष्य क्षेत्र में वर्तते विद्यमान तीर्थंकर भगवंतों को अलग स्मरण करके सबको एक साथ तथा प्रत्येक प्रत्येक को मैं वंदन करता हूँ। ऐसा कहकर अति भक्ति भीने चित्त से आचार्य भगवान नम गए हैं। ऐसे भक्ति के भाव मुनि को साधक को आए बिना नहीं रहते। चित्त में भगवान के प्रति भक्ति भाव उछले तब मुनि आदि साधक को भगवान का नाम आने पर भी रोम रोम उल्लसित हो जाता है। ऐसे भक्ति आदि के शुभ भाव आए तब भी मुनिराज को ध्रुव ज्ञायक तत्व ही मुख्य रहता है। इसलिए शुद्धात्माश्रित उग्र समाधि रूप परिणमन वर्तता ही रहता है और शुभ भाव तो ऊपर ऊपर ही तरते हैं तथा स्वभाव से विपरीत रूप वेदन में आते हैं। क्रमांक 408। अहो सिद्ध भगवान की अनंत शांति, अहो उनका अपरिमित आनंद। साधक के अल्प निवृत्त परिणाम में भी अपूर्व शीतलता लगती है। तो जो सर्व विभाव परिणाम से सर्वथा निवृत्त हुए हैं, ऐसे सिद्ध भगवान को प्रकट हुई शांति का तो क्या कहना। उनके तो मानो शांति का सागर उछल रहा हो। ऐसी अमाप शांति होती है, मानो आनंद का समुद्र हिलोरे ले रहा हो। ऐसा अपार आनंद होता है। तेरे आत्मा में भी ऐसा सुख भरा है, परंतु विभ्रम की चादर आड़ी आ जाने से तुझे वह दिखता नहीं है। क्रमांक 409। जिस प्रकार वटवृक्ष की जटा पकड़कर लटकता हुआ मनुष्य मधुबिंदु की तीव्र लालसा में पड़कर विद्याधर की सहायता की उपेक्षा करके विमान में नहीं बैठा, उसी प्रकार अज्ञानी जीव विषयों के कल्पित सुख की तीव्र लालसा में पड़कर गुरु के उपदेश की उपेक्षा करके शुद्धात्मा रुचि नहीं करता। अथवा इतना काम कर लूं इस प्रकार प्रवृत्ति के रस में लीन रहकर शुद्धात्म प्रतीति के उद्यम का समय नहीं पाता। इतने में तो मृत्यु का समय आ पहुंचता है। फिर मैंने कुछ किया नहीं, अरे रे मनुष्य भव व्यर्थ गया। इस प्रकार वह पछताए तथापि किस काम का। मृत्यु के समय उसे किसकी शरण है। वह रोग की, वेदना की, मृत्यु की, एकत्व बुद्धि की और आर्त ध्यान की चपेट में आकर देह छोड़ता है। मनुष्य भव हार कर चला जाता है। धर्मी जीव रोग की, वेदना की या मृत्यु की चपेट में नहीं आता, क्योंकि उसने शुद्धात्मा की शरण प्राप्त की है। विपत्ति के समय वह आत्मा में से शांति प्राप्त कर लेता है। विकट प्रसंग में वह निज शुद्धात्मा की शरण विशेष लेता है। मरण आदि के समय धर्मी जीव शाश्वत ऐसे निज सुख सरोवर में विशेष विशेष डुबकी लगा जाता है, जहाँ रोग नहीं है, वेदना नहीं है, मरण नहीं है, शांति की अखूट निधि है। वह शांति पूर्वक देह छोड़ता है, उसका जीवन सफल है। तू मरण का समय आने से पहले चेत जा, सावधान हो, सदा शरणभूत। विपत्ति के समय विशेष शरणभूत होने वाले ऐसे शुद्धात्म द्रव्य को अनुभवने का उद्यम कर। क्रमांक 410। जिसने आत्मा के मूल अस्तित्व को नहीं पकड़ा, स्वयं शाश्वत तत्व है, अनंत सुख से भरपूर है, ऐसा अनुभव करके शुद्ध परिणति की धारा प्रकट नहीं की, उसने भले सांसारिक इंद्रिय सुखों को नाशवंत और भविष्य में दुखदाता जानकर छोड़ दिया हो और बाह्य मुनिपना ग्रहण किया हो, भले ही वह दुर्धर तप करता हो और उपसर्ग परिशह में अड़िग रहता हो, तथापि उसे वह सब निर्वाण का कारण नहीं होता, स्वर्ग का कारण होता है, क्योंकि उसे शुद्ध परिणमन बिल्कुल नहीं वर्तता, मात्र शुभ परिणाम ही, और वह भी उपादेय बुद्धि से वर्तता है। वह भले नौ पूर्व पढ़ गया हो, तथापि उसने आत्मा का मूल द्रव्य सामान्य स्वरूप अनुभव पूर्वक नहीं जाना होने से वह सब अज्ञान है। सच्ची भाव मुनि को तो शुद्धात्म द्रव्याश्रित मुनि योग्य उग्र शुद्ध परिणति चलती रहती है। कर्तापना तो सम्यक दर्शन होने पर ही छूट गया होता है। उग्र ज्ञातृत्व धारा अटूट वर्तती रहती है। परम समाधि परिणमित होती है। वे शीघ्र शीघ्र निजात्मा में लीन होकर आनंद का वेदन करते रहते हैं। उनकी प्रचुर स्वसंवेदन होता है। वह दशा अद्भुत है, जगत से न्यारी है। पूर्ण वितरागता न होने से उनके व्रत, तप, शास्त्र रचना आदि के शुभ भाव आते हैं अवश्य, परंतु वे हेय बुद्धि से आते हैं। ऐसी पवित्र मुनि दशा मुक्ति का कारण है।